શ્રીમદ બેલગોલામાં વિજ્ઞાન વિષયક તત્વ ચર્ચા મૂળ કેસેટમાં શરૂઆતમાં અવાજ ધીમો છે.
ઉદયનો જે ક્રમ છે એ પ્રમાણે ઉદયનો ક્રમ ચાલુ જ રહે છે. જીવ સ્વરૂપમાં સાવધાન નથી એટલે આપોઆપ સહજપણે ઉદયને અનુસરે છે. એવો ઉદયનું અનુસરણ પરિણામ ન થઈ જાય અને એના બે ભેદ સુખ અને અસુખ એવા બે ભેદ એક વિપરણી જાય છે. જે જીવને વિજ્ઞાન કરવું છે એને આ એક સામાન્ય ખ્યાલ છે કે અત્યાર સુધી નિરંતર હું ઉદય ભાવે કરું છું અને જ્યાં સુધી આવું ઉદય ભાવે પરિણમવાનું ચાલુ રહેશે ત્યાં સુધી નવા કર્મ ચાલુ રહે. ઉદય ધારાવાહી ચાલુ છે એની સાથે શુભાશુભનું પરિણમ ધારાવાહી રહ્યા કરે છે. ધારાવાહીનું કર્મ બંધ આવી એક સામાન્ય પરિસ્થિતિને કારણે જીવને છૂટવાનો કોઈ ઉપાય નથી. જીવનું સંગ્રહ છે ને હું બાંધા કરે જે જીવ વિજ્ઞાન કરવાના પ્રયત્નમાં આવે છે પ્રયાસમાં આવે છે એને આ અહીંથી જુદું પડવું છે. ઉદયથી ઉદયને અનુસરવું નથી, ઉદયથી જુદું પડવું છે. જો ઉદય ભાવમાં એમને રહ્યા કરે તો નવાબંધ થયા જ કરે. તો ઉદયનું અનુસરણ ન કરવું તો નવા બંધનમાં ન આવશે. ઉદયનું અનુસરણ ન થાય તો જીવ નવા બંધનમાં ન આવે. એ ઉદયનું અનુસરણ કેમ ન થાય કે આ જીવ ઉદયમાં ઉદયનો જ્ઞાતા દ્રષ્ટા હોય છે. આ પૂર્વ કર્મનો ઉદય છે. હું એ ઉદય વાળો નથી પણ હું જ્ઞાતા દ્રષ્ટા છું. આવા ઉદય વાળો છું ત્યાં સુધી નવું બધું ચાલે છે. ઉદય વાળો નથી પણ નાતા દ્રષ્ટા છું તો જુદો પડવાના અવકાશ છે. આ વેદજ્ઞાનનો સાદામાં સાદો ઉપાય વેદજ્ઞાન કરવાનો હું ઈઝી પ્રેક્ટિકલ જેને કહું તો શુભાશુભ ચાલ્યું જ આવે છે. કર્મ પણ શુભાશુભ રૂપે ઉદયમાં ચાલ્યું આવે છે અને આ જે આપોઆપ પ્રણમી રહ્યો છે આ એની અનાદિથી વર્તમાન સુધીની આ સ્થિતિ છે. આ એક નીતિમાં અનંતકાળથી વર્તમાન સુધીનો સંસાર સંક્ષેપમાં આવી ગયો. જીવનો સંસાર એક નીતિમાં કહીએ તો શું કે ઉદયને અનુસરીને પરણી ઉદય ભાવમાં આ અનંતકાળના સંસારનો સંક્ષેપ છે. હવે એનાથી નવું બંધન છે અને મુક્ત થવું છે. જેને બંધનથી જેને છૂટવું છે એને એક જ ઉપાય છે કે ઉદયમાં જ્ઞાતા દ્રષ્ટા ભાવે રહેવું. જ્ઞાતા દ્રષ્ટા ભાવે રહેવું એટલે કે જ્ઞા માત્ર જાણવું એવું એનો સ્વભાવ છે, જાણવું એવું એનો સ્વભાવ છે, જાણવું એવું એનું સ્વરૂપ છે. એટલે ઉદય વાળો એવું માનીને જે પ્રણમી રહ્યો છે એને નિર્ણય નિશ્ચય બદલવો પડે. ઉદય વાળો નહીં, હું માત્ર જાણવા વાળો, જાણવા વાળો હોવાથી હું જાણવા વાળો રહું, જાણવા વાળો રહું તો ઉદય ભાવમાં ન આવું તો નવો બંધાણ, અને જો જાણવા વાળો ન રહું તો સહજપણે ઉદય ભાવમાં પરિણમ જશે. જાણી રહ્યો છું પણ ઉદય ભાવમાં તન્મય થઈને જાણવું થઈ ગયું છે, એ પ્રકારનું જાણવું એ જાણવું નથી. ત્યાં જ્ઞાન હોવા છતાં ત્યાં જીવને ઉદય ભાવ જ્ઞાન તો છે, ક્યારેક એક સમય જ્ઞાન વગરનો તો નથી, પણ છતાં જીવને ઉદય ભાવ છે એમ કહેવાય છે, જ્ઞાન છે એમ નથી કહેવાતો. અને જ્ઞાન હોવાથી જ્ઞાનમય પણ એ મારું સ્વરૂપ છે એવું જ્ઞાન માં રહે તો ત્યાં ઉદય ભાવ છે છૂટવાનું, છૂટા થવાનું, જુદા થવાનું અને જ્ઞાન પરિણામ બને.
મારે ઉદય ભાવ સાથે તન્મય થવાનું નથી, આ નિર્ણય કરે છે.
ઉદય ભાવ છે એ હું છું, ઉદય વાળો હું છું, એવા નિર્ણયથી પરણ મેળવ્યો. નિર્ણય બદલે છે કે હું ઉદય વાળો નહીં, હું જ્ઞાનમય જ્ઞાતા, જ્ઞાનમય એવો હું જ્ઞાતા, ઉદય વાળો હું નહીં, ઉદયનો પણ જ્ઞાતા, સર્વનો જ્ઞાતા, સર્વનો પણ જ્ઞાતા, સર્વનો પણ જ્ઞાતા, જ્ઞાતા એટલે જ્ઞાતા. ખરેખર જ્ઞાનમાં જ્ઞાતા પણ છે, જ્ઞાનમાં શું છે, જ્ઞાતા પણ તો છે. વાસ્તવિકતા એ જ્ઞાનનું સ્વરૂપ જોવામાં આવે તો જ્ઞાનનું વાસ્તવિક સ્વરૂપ છે, તે જ્ઞાતા પણ તે જ્ઞાનનું વાસ્તવિક સ્વરૂપ. જ્ઞાનમાં શું રહ્યું છે, જ્ઞાતા પણ, જ્ણાનમાં જ્ઞાતા પણ છે, માત્ર જાણવા પણ છે એ વાત મારા નિર્ણયમાં મારી સમજમાં કદી આવ્યું નથી. અને તેથી જ્ઞાનમય પણ હોવા છતાં જ્ઞાનમય પણ છું એવા ભાવે હું પ્રમાણમાં નથી, જ્ઞાનમય પણ હું હોવા છતાં જ્ઞાનમય પણ છું એવા ભાવે હું પ્રમાણમાં નથી. આ બહુ મોટી ભેદજ્ઞાન કરનાર જીવ પૂર્વ કર્મ અનુસાર શુભાશુભ ભાવ ને ઉદય પ્રસંગ છે સર્વથી એ વાળો ને સર્વથી ભિન્ન સર્વથી જુદો હું જ્ઞાનમય પણ હોવાથી મારી ભિન્નતા છે. મારી ભિન્નતા શું કરવા છે કે હું ઉદય વાળો નથી પણ જ્ઞાનમય પણ છું, તેથી મારી ભિન્નતા નિર્જરા અધિકારમાં આ શૈલી અપનાવી છે. સમય સારમાં નિર્જરા અધિકારમાં સંયોગ દ્રષ્ટિ જ્ઞાનમય પણ જ્ઞાનમય પણ હોવાને લીધે જ્ઞાનમય પણ હોવાને લીધે એનો અર્થ શું કે પોતે એમ અવલંબન લે છે કે હું તો જ્ઞાનમય પણ છું ને, આવો હોવાથી મારે શું છે ઉદય સાથે. ઉદય એક જુદી ચીજ છે જે પૂર્વના પૂર્વથી અજ્ઞાનપણે થયેલી ભૂલથી ભૂલનું ફળ ત્યારે આવેલું છે. અજ્ઞાનપણે પૂર્વે ભૂલ કર્યું, ભૂલ કરી છે એનું ફળ જે કાંઈ છે તે આ ઉદય છે, બીજું કાંઈ ઉદયમાં નથી. ઉદય એટલા પણ એ ભૂલ તો એ પ્રકારની હતી કે હું જ્ઞાનમયપણે છું એવું જે અજ્ઞાન હતું એને લઈને હું ઉદય વાળો છું એમ એમ જાણીને ઉદયમાં તન્મય થઈને શુભાશુભ જે કાંઈ ઉદય આવ્યો એમાં શુભાશુભ પ્રણ થતો રહ્યો, નવો બંધ થતો રહ્યો, એનો પાછો ઉદય આવ્યો નવો બંધ થતો રહ્યો. આજે ચક્કર છે એમાંથી છૂટવા માટે બહુ વજનદાર વાત્ય કરી છે આચાર્ય મહારાજે, કે જ્ઞાનમયપણે હોવાને લીધે. કેટલી ગાથાઓ એવી દીધી પરિગ્રહ ઉસકો પરિગ્રહ નહીં હૈ જિસકો ઈચ્છા નહીં હૈ, જિસકો ઈચ્છા નહીં હૈ ઉસકો પરિગ્રહ નહીં હૈ. ઈચ્છા નહીં હૈ મતલબ કે વાસ્તવ મેં મેં જ્ઞાનમય હોને છે શિવા જ્ઞાન મુજબ તો કિસ ચીજ કી આવશ્યકતા હૈ, જ્ઞાન મેં તો કિસ ચીજ કી આવશ્યકતા હોતી નહીં, ક્યોંકિ જ્ઞાન અલગ હી રહેતા હૈ, જ્ઞાન જ્ઞાન રૂપે રહેતા હૈ, મેં જ્ઞાન મેં હી રહેતા હું, કોઈ ચીજ કી મુજબ આવશ્યકતા હૈ તો બાત નહીં, ક્યોંકિ મેં જ્ઞાન સ્વરૂપ હું. યે યે ઇસકી પદ્ધતિ હૈ અવલંબન કરને કી, પતા હૈ. ઈચ્છા તો અજ્ઞાનમય ભાવ હૈ ઓર અજ્ઞાનમય ભાવ જ્ઞાની છે, જ્ઞાની કિસી કો નહીં ચાહતા, જ્ઞાનમય એક ના એક ભાવ કે સદભાવ કે કારણ કેવલ જ્ઞાની કેવલ જાયક હી હૈ. યે અહીંયા સે બાત કા પૂછ્યા કિસી, ફિર અલગ અલગ બાત લિયા, પુણ્ય કા પાપ કા જાયક હૈ, પુણ્ય કા પાપ કા મંગલ જાયક, ઇસકા મતલબ કે શુભાશુભ કા વો જાયક હૈ, કે યે શુભાશુભ ભાવ હૈ મેં જ્ઞાન મેં ઇસીલિયે મેરા વો જાયક હૈ, મેં ક્યું મેરા જે હૈ ક્યોંકિ મેં જ્ઞાન મેં હું ઇસીલિયે મેરા યે જે જ્ઞાન મેરે મેં ચલ રહ્યા હૈ, જ્ઞાન મેં સન્મય હું, જ્ઞાન સન્મય સફેદ હું, જ્ઞાનમય હું, બસ ઇસલિયે ઓર સબ કુછ મેરા જે હૈ. ઇસકા સમય ઉદય આપણે ઘેર લીધા હૈ, ભોજન કા પાણી કા સબ ઉદય ભાવ નોર્મલી હમેશા જે હોતે રહેતે હૈ, પહેલે પુણ્ય લિયા ફિર પાપ લિયા ફિર ભોજન ફિર પાણી, એસે બહુવિધ ભાવ જો ભી હૈ. જ્ઞાની ઇસકા જ્ઞાતા હું મેં, ઈચ્છા નહીં ભિન્નતા હોતી હૈ, ઇસલિયે કહેતે હૈ ઈચ્છા નહીં હૈ. જો અભિન્નતા કરતા હૈ ઉસી કો હી પરિગ્રહ માનતા હૈ, જો ભિન્નતા કરતા હૈ ઉસકો પરિગ્રહ માન નહીં કહેતા, ક્યોંકિ વો તો ઉસસે અલગ પડતા હૈ ભાવ મેં, ભિન્ન પડ જાતા હૈ. એસે પૂર્વબદ્ધ કર્મ કા ઉદય જો ભી હૈ, ભોગ ભોગ જીતને ભી હૈ, યે સંક્ષેપ મેં સબકો લે લે. સંપ્રાપ્ત ઉદય કે ભોગ મેં જો યોગ બુદ્ધિ જ્ઞાની છે, ઉદય તીન પ્રકાર કે અતીત વર્તમાન ઓર ભવિષ્ય તીનો પ્રકાર મેં તીનો પ્રકાર મેં ભિન્નત્વ હૈ. ક્યું કે મેં જ્ઞાન નહીં હું, વર્તમાન મેં તો ભિન્ન હુઆ, બુદ્ધ ભવિષ્ય હોઈ ગયા સાથી સાથ હો ગયા, જબ મેં ભિન્ન હૈ હું તો ભૂતકાલ મેં જો ભિન્ન થા તો ભિન્ન હોગા, બિના વિકલ્પની વાત ઇસ્માઈ જી
કે અધ્યયન દશામે તો જૈસે રૂપ કા ચિંતન હૈ રૂપ મુજે રૂપ કા નિશ્ચય કરના એસા વિકલ્પ મુજે રૂપ કા નિશ્ચય કરના હૈ કે મેં જ્ઞાન માત્ર હું એસા જો વિકલ્પ ये भी फिर पूरे उदय हो गया।
मैं तो जहां तक सम्यक प्रकार से भिन्न नहीं हुआ वहां तक तो समुदय भाव में जाता है, जाता है समुदय भाव में, विकल्प मात्र उदय भाव में जाता है, इसमें सवाल नहीं है। लेकिन जहां से भिन्न होने का उसकी भावना हुई वहां से ये उदय में जो एकत्व बुद्धि है उसकी तीव्रता में फर्क पड़ता है। उदय भाव जो वर्तमान जिस वर्तमान में चलता है उसमें एक स्वतंत्रता रही हमेशा, उदय से अधिक भी वो अपराध करे और उदय से कम भी अपराध करे। ये जरूरी नहीं कि जिस डिग्री का उदय हो उतना ही डिग्री की डिग्री अपराध हो, ये जरूरी नहीं। सभी जीव कोई ज्यादा कर लेता है, कोई कम कर लेता है और उसमें उसके हमेशा स्वतंत्रता है। क्यों ज्यादा करता है, क्यों कम करता है, इसका कोई कारण नहीं, अज्ञान दशा में, संसार दशा में। लेकिन कुछ विवेक हुआ, कुछ विचार हुआ कि मुझे संसार से छुटना है, जो मुक्त मेरा स्वरूप का मैं निश्चय करूँ, तो उस वक्त उदय भाव होते हुए भी अपराध उसका जो है वो तो उसमें फर्क है। पहले फर्क तो हुआ है कभी कभी, लेकिन कोई जान बूझ के समझदारी से नहीं हुआ है। पर यहाँ कुछ हुआ है, उसमें एक विवेक जागृत हुआ और तो उदय भाव का अनुसरण तो है लेकिन अपराध में फर्क है। अपराध तो दो तरह तो दो तरह से फर्क होता है, ज्यादा भी हो कम भी हो, लेकिन ये कम होता है उसमें एक ज्ञान का एक नया विवेक का एक अंकुर होता है, तो इसी कारण से उनका अपराध में थोड़ा फर्क पड़ता है। मैं आपको कह रही हूँ मतलब बंद नहीं होता है, ग्राहक भाव में जब बंद नहीं होता मतलब उसके जो बंद होता है उसका मात्रा कमती हो जाता है, कहने का तात्पर्य ये
जाने को तो बंद
अज्ञाता
ही है।
लेकिन जो जीव धैर्य ज्ञान का प्रयत्न करता है, अपना तो प्रकरण पढ़ रहा था कि भेद ज्ञान किस विधि से करता है, प्रत्येक प्रसंग जो अपने चालू किया वो भेद ज्ञान की विधि संबंधित है, उसने दृष्टांत ले लिया भेद ज्ञानी का। भेद ज्ञानी कैसे भेद ज्ञान करता है, इसकी विधि कौन सी उसने अपनाई है जिसका हम अनुकरण करें, इसलिए इसका दृष्टांत लिया। भेद ज्ञान को भेद ज्ञानी को ये बात आ गई कि मैं ज्ञायक हूँ, इसलिए ज्ञायक होने की वजह से ज्ञान मैं हूँ इसलिए उदय का ज्ञाता है, तो ज्ञाता दृष्टापना उसको रहता है उस और अल्प संख्या में अल्प मात्रा में तो रागांश भी पैदा हो जाता है, तो अल्प
मैंने ये निर्णय की पोजिशन के आगे वाले पोजिशन में ये अवस्था है,
इतनी स्पष्ट अवस्था नहीं है, लेकिन इसी जाति में आने का एक प्रयास रहता है, इस विधि में प्रवेश करने का एक प्रयास होता है, जो इसके सदृश होंगे तभी उसी जाति में आ पाएगा। उसके प्रसन्न प्रतिकूल हुए तो उसमें
ठीक है,
कुछ अंश में उसको सदृशता उसमें होनी जरूरी है।
ठीक है, सेम स्टाइल का प्रैक्टिस करना होगा।
सेम स्टाइल तो सेम स्टाइल का प्रैक्टिस चालू करे जब तक उसमें आ सके।
ठीक
है, तो इसको प्रारंभ करना है कि मैं ज्ञानमय हूँ, कि ज्ञान चलता है, इसी से बात स्पष्ट है। प्रवर्तमान ज्ञान से बात स्पष्ट है, परिस्थिति स्पष्ट है कि मैं ज्ञान ज्ञान प्रवर्ता है, यही सबूत है मेरी ज्ञान मिलता का कि मैं ज्ञान में।
मैं जैसे कल बात कर रहा कि ज्ञान मैं मात्र हूँ, इसमें कल्पना नहीं करना है, अनुभव करके देखना है कि मैं ज्ञान मात्र हूँ या नहीं।
अनुभव करके मैंने चलते जो चलते ज्ञान किया है उसको अवलोकन करके
सिद्ध करना है,
अवलोकन करके उसका अनुभव को देखते हुए उनको बात लेनी है। एक ज्ञान का विकल्प कर ले, मैं ज्ञान में हूँ, ज्ञान में हूँ, क्या फर्क है कि विकल्प में ज्ञान पर लक्ष्य रहा और ज्ञाता का विकल्प माने में ज्ञाता, और अवलोकन में ज्ञान से लक्ष्य हुआ और मैं ज्ञान वाला हूँ, मैं ज्ञान में हूँ, ये फर्क हो गया,
ज्ञात में फर्क हो गया,
दिशांतर हो गया। ये पहला जो काम होता है वो दिशा बदलने का होता है, उस वक्त भेद ज्ञान हो नहीं जाता, लेकिन ये दिशा बदलना ये भी एक अपूर्व चीज है। धर्म के क्षेत्र में अनंत बेर आया और अनंत प्रकार के विभिन्न प्रकार के प्रयत्न किए, कभी कभी दिशा नहीं बदली। यहाँ जो पिन पॉइंट बात है वो है कि दिशा कैसे बदले, दिशा बदले उसके दशा बदली, दिशा नहीं बदली उसके दिशा कभी नहीं बदली, इनका विज्ञान से दिशा बदलने का प्रयास भी नहीं किया कभी, उसे दिशा बदलने की उसका
ध्यान ही नहीं।
करीब करीब जीव ने अनुकरण किया है, गहराई में नहीं जाते हुए, चलो ज्ञानी तो तपस्या करता है हम भी कर ले, ज्ञानी व्रत को धारण करता है
बाह्य क्रिया में ही रही है,
ज्ञानी शास्त्र पढ़ता है, जो जो क्रिया ज्ञानी करता है हम इसका ज्ञानी होने के लिए काम करते हैं। तो वो उसमें उसको दिखा जो इंद्रिय ज्ञान में देखा
बाह्य
बाह्य में सही बाह्य अनुकरण
अंतरंग
इनके अंतर्दशा को नहीं पाएगा, कैसे अंतर्मुख हुआ, कैसे श्रेष्ठन्मुख हुआ, पर श्रेष्ठन्मुख होने और अंतर्मुख होना उसमें कैसे दिशांतर होती है, सारी दिशा बदल जाती है, बहिर्मुखता छुटती है, अंतर्मुखता आती है, इस विषय में क्या होता है कि चारित्र एक शोषण की प्रधानता वाला परिणाम होता है, थोड़ी शांति तीव्र शांति नहीं रहती, थोड़ी शांति जीव को ऐसा लगता है कभी कुछ कुछ न कुछ इसका फल मिल रहा है। ज्ञान का शोषण होता है तो कई प्रकार का शांत ज्ञान हो जाता है, वो भी उसको पता चलता है कि पहले तो ये समझ नहीं कि अब मेरा नया ज्ञान हुआ, ज्ञान की प्राप्ति हुई है, वहाँ भी कसाई की मंदता की शांति थोड़ी सहज रूप से पैदा हो जाती है, तो उसको लगता है कि कुछ
हुआ
कर्म का काम होता है, कोई फल मिलता है। दोनों जगह के विख्यात दर्शन मौजूद हुआ है, दर्शन मुंह के प्रति उसका ज्ञान गया ही है, ज्ञान का शोषण कार्य प्रकार से ज्ञान का सूक्ष्म और चारित्र का सूक्ष्म इस परिस्थिति में अनंत काल निकला है। कभी दिशांतर होने का होता ही तो आज ही दूसरी जगह छोड़ दो। गुरुदेव ने जो अभूतपूर्व स्पष्टीकरण किया है, कितना अभूतपूर्व किया है, इतना स्पष्टीकरण 125 जन्म 64 तो संक्षेप करके उठा हुआ है, कितना स्पष्टीकरण हुआ है। दिशांतर होने का ज्ञान कितने जीवन का है, इस परीक्षा में आ गया कोई विद्वान हो, कोई भी मोक्ष हो, दिशांतर होने का प्रयत्न करता है। पर दिशांतर कैसे होना, इस विषय की गहराई में जाने का कोई प्रयत्न करता है दिशांतर, तो पहले दिशांतर होता है, फिर दिशांतर। दिशांतर कैसे होना, ये जिज्ञासा का विषय भी कहा है। इस तरह की जिज्ञासा वाला कोई नहीं है। दिशांतर पहले होता है, दिशांतर तो दशा बदलती है, वो मोटी बात है, इसलिए पूछ लेता है, जिज्ञासा वो करता है, तो मुझे सहानुभूति कैसे हो, मुझे समझने दे सकते हो, क्योंकि तो मोटे मोटे रूप से ये बात बार आई। लेकिन इसके पहले एक दिशांतर होना है, वो कैसे है? इस चालू परिस्थिति में मेरी दिशा कैसे है? जब कोई बात को हासिल करना है, कोई चीज को हासिल करना है, तो उसके पीछे ऐसे लगे लगने वाला वो भी होना चाहिए, तो इसका मूल को तो पकड़े आखिर में इसका बिजनेस किस तरह से होता है। माना, स्वीकार कर लिया कि ये संगीत लक्ष्य वाकई मोक्ष मार्ग है, और उस मोक्ष मार्ग में आरोह होना चाहिए। लेकिन इससे पहले तो मिथ्या तो दिखाए, वो मिथ्या तो और संगत
अपोजिट है,
एकदम अपोजिट है। कैसे ये पलटनी हो, पलटना होना, इसमें क्या प्रोसेस है,
किस चीज का प्रोसेस है,
इस बात की जिज्ञासा तो नहीं करना, तो समय कैसे वो आएगा। ठीक है, ऐसा तो नहीं आ जाता कि ऐसा समय दर्शन तो मुख्य मार्ग है, तो लेना ही चाहिए लेना ही चाहिए। वास्तविकता ऐसी कैसे है, ये बात में दिशांतर है, परमाधिकार में ये दिशांतर होना ही अपूर्व है। ये दिशांतर होने में ज्ञान की ज्ञान ही साधन और मिथ्या दृष्टि के पास कुछ दिशांतर होने के लिए कुछ साधन, एक ज्ञान ही साधन। ज्ञान का कार्य अवलोकन करना है, खुद को अवलोकन करें, देशांतर होने का कारण पर लोग पर को तो अवलोकन कर ही रहा है, तो दिशा में चलता है, कई दिशा में उसने धर्म सभी धर्म के कहलाने वाले धर्म के साधन को जुटाया है, लेकिन दिशाओं के लिए इसलिए ज्ञानी ने कहा कि ये कोई धर्म के साधन ही नहीं है, सब साधन बंधन हुआ रहा न कोई उपाय। अगर कोई ज्ञानी किसी पात्र जी को अपनी सिगरेट देता है तो ये दिशांतर ऐसे होगा। जो ज्ञान है वो ज्ञान से ही ज्ञान को देता, यही अवंध परिणाम है, यही भेद ज्ञान है, यही उदय से छूटने का यही एक कारण है, क्योंकि ज्ञान से ज्ञान यहाँ से तुझे तेरा परिपूर्ण स्वरूप लक्ष्यगत हो जाएगा, यहाँ से लक्ष्य होते ही इसके प्रति तरह बल बढ़ते ही स्वसंवेदन हो जाएगा। जो स्वसंवेदन कुछ नहीं है, सिर्फ ही ज्ञान को ज्ञान का वेदन, उसी का नाम ही स्वसंवेदन, और कोई चीज नहीं। तो जो स्वसंवेदन ज्ञान का ज्ञान का ज्ञान को ज्ञान का वेदन, यही स्वसंवेदन है। तो उसी का ही अवलोकन चालू करो, ये निशान पर का प्रारंभ है। तीव्र पात्रता में यही विषय पर अगर जीव का ध्यान गया या कोई उसका ज्ञान में ये बात समझ में आई अंतर में, ऐसा ज्ञान ज्ञान से अपने को ही अपने में देखना है, ज्ञान में ज्ञान को ही देखना है, ज्ञान में सिवा ज्ञान कुछ को नहीं, किसी को नहीं देखना है। तो उसको ये फितरत मिल गई, वो रास्ते पर आ गया, उसको बुद्धि आ गई, वो उस बुद्धि में आगे बढ़ जाएगा। मोटी मोटी जो बात है, कितनी गाथा लिया है, बहुत गाथा ही ली है, ऐसा भाव लिया है। मिनानी तो मोटी मोटी जो बात है, कितनी गाथा लिया है, बहुत गाथा ही ली है, ऐसा भाव लिया है। मिनानी तो भाव का ध्रुवत्व होने से मैं एक नायक भाव स्वरूप नहीं थी, इसलिए किसी भी प्रकार का कांक्षमाण पदार्थ, इच्छा का विषय पदार्थ मेरे से भिन्न होने से मेरी पहुंच नहीं, पदार्थ से मेरे में दृष्टि संकोत्तीर्ण एक नायक भाव महिता के कारण सभी कर्म फलों के प्रति समस्त लोगों का अभाव है। क्योंकि एक नायक भाव में हूँ मैं, इसलिए जो भी उदय है वो कर्म के फल, मैं इसकी आकांक्षा में करूँ ये तो सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन मैं तो ये फल जो है इससे अब कैसे भिन्न हूँ, इसके प्रयत्न में खड़ा हूँ। बाल लाइन ही अलग अलग हुई, सारे जगत के जीव कर्म फल की आकांक्षा में खड़ा है। भविष्य की चिंता क्या है, कर्म फल है, कैसा कर्म फल है, मेरा भविष्य कैसा है। ज्योति शादी के किसी जैसा ध्यान जाता है तो उसको क्यों निषेध करते हैं, अध्यात्म का क्या लेना देना है इस निषेध के साथ, यही इसका निषेध, यही यही इसका निर्णय लेना है, यही संबंध है इसका। वर्तमान कर्म फल से तुझे भिन्न होना है तो भविष्य का तो सवाल ही कहाँ पैदा होता है। भविष्य भविष्य तुम अपने भाव को लंबा ले, बात ही कैसे होता है। तुझे तो यही लाइन पकड़नी है कि जो वर्तमान में उदय आ रहा है वो भूतकाल के बंधे हुए कर्म फल है, बंधे हुए कर्म के फल है। इससे ही मैं जब भिन्न होने का प्रयत्न करता हूँ तो भविष्य के लिए तो मेरा सवाल ही कहाँ पैदा हुआ, तो वहां तक मेरा भाव लंबा जा रहा है। अभी मैं भिन्न हो रहा हूँ, भिन्न होने का प्रयत्न कर रहा हूँ, तो भविष्य में जो पूर्व बंधा हुआ पूर्व कर्म ग्रत आएगा तो उससे भी मैं भिन्न ही होने वाला हूँ, इसकी चिंता का कोई सवाल ही कहाँ पैदा होता है। लाइन कितना डिफर होता है, डिफरेंट हो जाता है, उल्टा होता है, उल्टा हो जाता है, उल्टा सोचता है,
सीधा हो जाता है, हम लोग उल्टा काम कर रहे हैं।
जो उल्टा है इससे उल्टा इसका नाम ही सीधा है, उल्टे से उल्टा इसका नाम ही सीधा है, और क्या। मैंने अभी तो कर्म फल के भोगने का दुख से तो छूटा, लेकिन आगामी होने वाले जो सभी दुख है अब भी से छूटा। आगे तो दुख होने का सवाल ही नहीं है, अब भी से छूट गया। तो बात कैसा बहुत तो जीव को चिंता ज्यादा भविष्य की है, और इसलिए अगर उसको कुछ 5-25-50 लाख आ गया है तो भी उसको चैन से क्यों, तो भविष्य की चिंता। जैसे कोई डाकिनी का रोजगार हो गया हो शाकिनी का, यही बात इसकी भी चिंता की है। और हमने सोचो ये भविष्य की कोई भी कोई बात चिंता में पड़ता ही रहता है। तो ये बहुत तीव्र पर सन्मुख होने की जो पद्धति है इसका एक विशेष स्वरूप है। यहाँ तो दिशा ही जिसको बदलना है, इसकी तो सवाल बिल्कुल लाइन ही बदलना है। पहले तो निर्णय कर ले उस हिसाब से, मैं ज्ञानमय हूँ, एक ज्ञानमय तंको तीन ज्ञानमय स्वभाव वाला हूँ, वर्तमान उदय से भिन्न हूँ, और वर्तमान उदय में मेरे परिणाम जितने भी जाते हैं वो बंध का कारण होने से मैं इस लाइन को उदय भाव को छोड़ने के लिए प्रयत्न, मेरी भिन्नता को अंगीकार करते हुए, तो मेरी भिन्नता का मैंने अंगीकार कर लिया है, तो भिन्नता लेकिन अंगीकार नहीं किया था, तो उदय भाव से छूटा है। जो वर्तमान उदय से छूटता है उसको भविष्य का क्या फिर चिंता, क्या वैसे तो जीव को भय है, चिंता कोई फालतू नहीं करता है, लेकिन भयान्वित होके करता है। तो जब ये पता चल गया तो ये दिशांतर होने में तो किसी भी हालत में किसी भी प्रकार के पूर्व कर्म के उदय की हालत में उदय के बीच में होते हुए भी भीतर से मेरा सुख ये अनुभव में आएगा। ईद समान मेरा पद जो है उस रूप में मेरे को अनुभव करूंगा, उस रूप मुझे मन में भी मेरा अनुभव करूंगा। अब भविष्य के संजोगों के भय किस बात का, जो भी होगा तो होगा, मैं तो भिन्न हूँ, भिन्न ही रहूंगा, अभी भिन्न हो गया हूँ तो वहां भी भिन्न ही रहूंगा, फिर रहूंगा तो मेरा सुख मेरे में से अनुभव होता रहेगा, बाहर तो भी कुछ होगा तो होगा, मुझे क्या है, मुझे क्या है, इससे मुझे क्या है। जैसे गृहस्थियों को तो ज्यादा परिवार की परिवार का बोझ आता है, तो हम पूछते हैं कि 50 साल पहले तो ये परिवार नहीं था, क्योंकि हमारा ये जन्म ही नहीं धारण हुआ था, पैदा ही नहीं हुए थे। 50 साल पहले वाला जो परिवार है ये भी सामने खड़ा कर दिया गया, अब अभी इसकी चिंता करो, करेंगे तो नहीं करेंगे, करेंगे बताएं, ये तुम्हारा पत्नी है, ये तुम्हारा प्यारा पुत्र है, नहीं करेंगे, कहेंगे तो नहीं करेंगे। अरे भी 50 साल पहले तो तुम इतने छोटा था, इतना छोटा था कि छोड़ ही नहीं सकता था, कोई कहते थे कि चिंता मत करो तो छोड़ नहीं सकता था, अब कहते कि करो तो करता नहीं है, ये फिर कैसे हो सकता है। तो अब इनकी हालत इन लोगों की बिगड़ रही है प्रत्यक्ष तौर पर, करो तो इसके पीछे मरने लायक काम करता था, मरने का तुम साहस करता था कि मृत्यु हो जाए तो भले ही हो जाएगी, तुम लोगों के अनुकूलता उनके लिए करेंगे। अब कनिक भी नहीं करता है, थोड़ा भी नहीं करता। बस यही हालत वर्तमान स्थिति की है, कुछ कुछ 50 साल आगे की, अभी 50 साल हो जाएगा तो इनके भी कहेंगे तो नहीं करेंगे।
आज एक लड़का जवान है और वो आज मर गया, तो उसका चित्र आगे का 5 साल के बाद का बच्चे का बताया जाए कि ये तुम्हारा बच्चा है, तो कौन सी बार कहते हैं?
कल्पना है ना, कल्पना जैसे जैसे करता है।
कल्पना तो वहां तक है, ये तो प्रूव हो गया वर्तमान है। ये संपत्ति का बंटवारा में आय होता है, लड़का होता है और पत्नी भी होती है। जब कोर्ट के मुकदमे चल जाते हैं अधिकार के लिए, बात छोटी मोटी होती है कैसे भी, तो आदमी को ये लगता है कि मैंने कितनी बड़ी चिंती, मेरे निमित्त से ये सब संपत्ति आ गई और मुझे ही देने में ये लोग अधिकार का जो उपयोग कर रहे हैं, तो हमने ऐसी भूल क्यों किया, करना ही नहीं चाहिए था, ऐसा लग जाता है कभी कभी।
अनुभूति हर आदमी की जिंदगी में अनुभूति,
ऐसा निकम्मा के लिए मैंने ये काम कर लिया, ऐसा उसको होता है, ऐसा निकम्मा के लिए मैंने ये काम कर लिया, अभी तक दुख भोगा, अभी तक साहस किया, अभी तक होश किया। भिन्नता का विचार वस्तु के स्वरूप को अनुसरण करते तो एक महाविवेक है, और फिर प्रसंग और उदय होने से करते हैं तो ये विवेक नहीं है, वो राग की जगह द्वेष में दिया है। वस्तु के स्वरूप अनुसार अगर विमुक्त कर लिया तो एक महाविवेक है, और फिर ये उदय हुआ कि ये निकम्मा है, इसलिए मुझे कुछ नहीं करना चाहिए, ये तो मेरे को जुदा है, बिल्कुल अलग रहता है, सब अलग काम करता है, सब इसकी अलग है, सब इनकी अलग है, मेरे क्या लेना देना, चाहे भाई हो या पत्नी हो। ऐसा हुआ है कि कई भाइयों ने इसके धनी के सामने इनका जमा किया है,
बेटा बाप के साथ करते हैं,
बेटा बाप के साथ करते हैं, ये तो बहुत मामूली है, भाई भाई में करता हूँ तो बहुत मामूली, ऐसा भी चलता है कि भले ही मेरा धनी साफ हो जाएगा लेकिन मैं उसको नहीं छोड़ूंगा, तो पहले वो उसके लिए मरा। फिर पीछे आपस में ये रात की जगह ली द्वेष ने, तो आपस में तनाव हो गया, एक पाए नहीं देता, पाई की कोई कीमत नहीं है लेकिन एक पाई नहीं दूंगा, मेरा अधिकार का सवाल है, पता है कि नहीं। ये रात की जगह लेता है देव, जब संसार में ये बात बनती है और राग उड़ जाता है, ममत्व खत्म हो जाता है, बिल्कुल ममत्व रहता ही नहीं, और ममत्व का स्थान तो द्वेष लेता है कि वो अपने चले तो उसका अहित भी कर डाले, उसको मारे, उसको लूटे, उसकी चोरी कर ले, जो भी उसको कई प्रकार के ऐसे हल्के परिणाम भी हो जाए नीचे कोटि का, तो ये राग की जगह द्वेष करना है, बजाय इसके वस्तु के स्वरूप को समझ कर विवेक चिंतन कर ले, अनंत काल का उनका तो काम हो जाए। जैसे अपन आए तो 1000 माइल मिलकर दूर होंगे, 900 माइल दूर होंगे, अब वहां क्या होगा? अरे जो होगा सो होगा, कर ले तो रहा काम, परिवार को तो छोड़ जाए, किसी भी प्रवृत्ति और जिम्मेवारी का तो कोई सवाल पैदा नहीं होता, यहाँ का क्या होगा? अरे जो भी होगा सो होगा, ये भी इनके पूर्वक्रम में क्या है, तेरे प्रयत्न से कुछ नहीं होता है, सभी के अपने पूर्वक्रम का उदय आता है, तेरा उसमें कुछ चलने वाला 1% भी नहीं है, अब तुझे विवेक हो तो तेरा खत्म बिंदत सोच ले, विषांतर कर ले। अगर विषांतर हो गया तो तू जगत का बादशाह हो गया, विषांतर नहीं हुआ तो वैसा ही भाव वरण समय समय का द्रव्य वरण भी अनंत काल का है। तो ये निरपेक्षता आए बिना, इस प्रकार की निरपेक्षता आए बिना अपेक्षा बुद्धि में दिशा कैसे चेंज होगी, दिशा कैसे विषांतर करना है तो अपेक्षा बुद्धि में दिशा निशांतर कैसे हो सकती है। जहां तक अपेक्षा बुद्धि है तो कुछ न कुछ ये करना है, वहां तक तो दिशांतर हो जाता है। दिशांतर होगा ये अपेक्षा बुद्धि बदलेगी तब, वहां तक नहीं होता है। भी क्या कहते हैं, अपेक्षा बुद्धि को यूं की यूं रिजर्व रख ले और फिर जो भी प्रयत्न है बाहर का वो करे, कैसे सवाल ही नहीं है। जा नहीं होता ज्ञाता दृष्टा प्रणाम, चीज जैसी है ऐसी दिखती है। जैसे एक पत्ता है उसमें हरापन भी है उसमें पीलापन भी है, देखते हैं सामने हरा हरापन देखता है, पीला पीलापन देखता है। हरापन अच्छा और पीलापन अच्छा नहीं, पीलापन अच्छा और हरापन अच्छा नहीं, कहां से लाया था? ये मुड़ता है, चीज जैसी है उसे ज्ञान में प्रतिबिंबित होती है, झलकती है, बात खत्म। जैसी की तैसी है उस वैसी देख करके उससे आगे चला जाता है, ये ठीक है, बस ये मुड़ता होगी। मेन बात हमने ये लिया है कि सर्वथी ज्ञानमय पणे सर्वथी हूं, ज्ञानमय पणे होवाने लीधे भिन्न छू, तेम सम भावे वेद हूं। ये बात है, इष्ट अनिष्ट नहीं करना, मात्र ज्ञाता हूं संभाव है। इष्ट हुआ ठीक है, अनिष्ट हुआ ये ठीक नहीं है। एकांक्षमाण और ये हुआ घृणा का परिणाम, दोनों विषम भाव है। विषम भाव से विरुद्ध संभाव है, संभाव से विरुद्ध विषम भाव है। विषम भाव में मूढ़ता लिया है, ये भेद ज्ञान होने नहीं देता, कोई नहीं देता। वो तो अटैचमेंट होता है तो वो भी क्षमता होती है। अटैचमेंट अनादि सा है, उसको डिस्कनेक्ट कर रहे हैं तभी तो संभव होता है। तेम संभावे वेदू, कौने वेदू के स्वने वेदू,
उसको वेदना नहीं, वेदना है
ज्ञान से ज्ञान को वेदना, ज्ञान में ज्ञान वेदन है उसको वेदना। दूसरे पदार्थों को तो तू वेद ही नहीं सकता, क्योंकि तेरी भिन्नता है, सर्वथा भिन्नता है, द्रव्य से क्षेत्र से काल से भाव, तेरा प्रवेश ही नहीं है, न तेरे में उसका प्रवेश। प्रवेश हुए बिना तो वेदा ही नहीं जाता। और ज्ञान ज्ञान में टंकोत किरण है, ये ज्ञान का ज्ञान वेदन टंकोट किरण है, टंक टांकने से उत्पन्न किया, उसको नाश नहीं कर सकते, ज्ञान वेदन को नाश नहीं कर सकते। इसलिए हर जगह टंकोट किरण है, टंकोट किरण, टंकोट किरण ऐसा लेते हैं। क्षणे क्षणे प्रसंगे प्रसंगे आ प्रकार अभ्यास वायोग्य है, इसका अभ्यास इस तरह से चालू करें, देशांतर हो जाएगी, देशांतर हो जाएगी। अगर इस अभ्यास इस प्रकार का अभ्यास नहीं किया और सब कुछ वो अकर्तव्य को किया, कर्तव्य को नहीं किया, ज्ञान थी इतले स्व थी, स्व थी इतले के ज्ञान थी, રાગ નું ભિન્નપણું થવામાં, જ્ઞાન થી જ્ઞાન નું એકત્વ થવું, તે જ મુખ્ય કારણ છે. રાગ નું ભિન્ન કરવું તે મુખ્ય નથી, પણ જ્ઞાન નું થી જ્ઞાન નું અભિન્નપણું થવું એ જ મુખ્ય કારણ છે. જ્ઞાન થી જ્ઞાન નું એકત્વ થવું તે કારણ છે. જ્ઞાન થી જ્ઞાન નું એકત્વ થતા રાગ થી ભિન્નત્વ થાય છે
ઓટોમેટિક.
મુખ્યતા નહીં એસા હોતા હૈ, આયે બિના નહીં રહેતા નાસ્તિકા વિશે, ક્યોંકિ નાસ્તિક પેદા હોતી હૈ. લેકિન મુખ્યતા હૈ જ્ઞાન સે જ્ઞાન કે એકત્વતા કા.
ઇમે અવલોકન મે ભી તો આસ્તિક પક્ષ હૈ ને, ઇસીલિયે ઇસકા મુખ્યતા
રિલેટિવ ટર્મ મેં એ ચીજ પર હૈ,
એ ચીજ તો હૈ તો હૈ,
લેકિન યે સ્વ હૈ તો યે પર હૈ, ઓર યે પર હૈ તો યે સ્વ હૈ.
રાગ નું અરુચિ, રાગ ની રુચિ વાળા ને અરુચિ થવાનું કારણ દુઃખ છે, બીજું કોઈ કારણ નથી. ભલે કોઈ એમ કહે પણ મોક્ષની ભૂમિકામાં મંદ રાગ છે, તે દુઃખ પણ મંદ છે, મલિનતા છે, એ પણ અરુચિનું કારણ છે. હંમેશા મલિનતા એ હંમેશા માટે ઘૃણાનો વિષય લીધો છે. સ્વચ્છતા શુદ્ધતા એની અપેક્ષા લખી લઈએ તો મલિનતા ઘૃણાનો વિષય લીધો છે, એટલે એની અરુચિ પણ થવાનું કારણ છે. અવલોકન થી વિભાવ નો અથવા રાગ નો સ્વભાવ સમજાયો હોય તો દુઃખ, મલિનતા અને પોતાથી વિપરીત પણ, પોતાની જાત થી વિપરીત પણ, આ ત્રણ મુદ્દા એમાં સમજાય છે. પરિચય થી ઓળખાણ થાય તો વારંવાર અવલોકન નો પ્રકાર જેને ચાલુ રહ્યો તેને રાગ નો પણ પરિચય થયો, વિભાવ નો પરિચય થયો. વિભાવ નો પરિચય થયો તો વિભાવ ને ઓળખાણ થયું. ઓળખાણ થી એમાં એને શું ઓળખ્યો, કેવી રીતે વિભાવ ને ઓળખ્યો કે વિભાવ માં મલિનતા છે, વિભાવ માં દુઃખ છે અને વિભાવ માં ઊંધાઈ પણ છે, ઊંધા પણ છે. મારાથી ઊંધો છે આ ભાવ, પોતાથી ઊંધો છે, મારાથી ઊંધો છે એમ સમજાય છે ચાલતો માણસ. આ એને અરુચિ નું કારણ છે. પોતાથી જે ઊંધો ચાલે તેના પ્રત્યે ઘૃણા થાય, જે ગંદો હોય તેના પ્રત્યે, મલિન હોય તેના પ્રત્યે ઘૃણા થાય, અને દુઃખરૂપ હોય ત્યાંથી ખસવાનું. ભેદ જ્ઞાન ની અંદર રાગ ની અરુચિ એનો એક ખાસ પડખું છે, વિશિષ્ટ પડખું છે. કોઈ ભેદ જ્ઞાન કરવા બેસે ત્યારે રાગ ને જ્ઞાન જુદા છે એવું એક ઉપલબ્ધ સમજણથી સમજાયું હોય છે, અને રાગ ને જ્ઞાન ના જુદાપણાના વિચારો કે અવલોકન કરવાનો પ્રયત્ન કરે છે કે તેને હું જુદા કેમ જાણું.
પણ આ રીતે એનો ઓળખાણનો હોય ત્યાં સુધી વાસ્તવિક ત્યાંથી ખસવા જુદાપણમાં તો ખસવાનો ભાવ છે, ખસીને જુદા જુદા તો એ અરુચિને કારણે થાય છે, અરુચિ ઉપજવાના આ કારણે એનો ઓળખાણ છે. એમ સ્વભાવનું ઓળખાણ એ સ્વભાવની અનન્ય રુચિનું કારણ છે, એમ વિભાવનું ઓળખાણ એ વિભાવની અરુચિનું કારણ છે. સામે સામે પ્રતિપક્ષમાં રહેલું ચીજ છે. જે જીવોને મંદરાગમાં મંદ કષાયમાં આત્માનું હિત દેખાય છે, આત્માનું કલ્યાણ દેખાય છે, અને તેથી એ મંદ કષાયમાં જ આગળ વધવાનો પ્રયત્ન કરી રહ્યા છે, એને વિભાવને સ્વભાવ માની લીધો છે અને વિભાવની રુચિ ત્યાં વધી જાય છે. ગુરુદેવે બહુ પ્રહાર કર્યો એનું કારણ કે જ્યાં દર્શન હું તારે ટાળવો છે ત્યાં વધારવાનો ધંધો ક્યાં લઈને બેઠો, રાગની રુચિ તારા દર્શન મને વધારશે, મારે કશાય બંધ થશે પણ દર્શન મને વધારશે. મિથ્યાત્વ મટાડવા માટે કશાય મંદ કરીશ પણ દર્શન હું તીવ્ર થશે તો નાસ્તિનો વિષય જે આવ્યા વિના રહેતો નથી વિજ્ઞાનના કાળમાં, એનું કારણ આ છે. રાગ તો રાગમાં ઉભો છે તો રાગની અરુચિ, રાગની મલિનતા, રાગનું દુઃખ એના જ્ઞાન એરિયા નાસ્તિનો વિષય. અસ્થિ ફિલ્યો તો જ્ઞાન માત્રથી, હું જ્ઞાન માત્ર છું એ રીતે સાવધાની, પોતાના જ્ઞાનથી સ્વભાવની સાવધાની, જ્ઞાન લક્ષણથી પર્યાયની સાવધાની નહીં પણ જ્ઞાન લક્ષણથી સ્વભાવની સાવધાની, એવું એક વલણ ઊંધો થાય. એ વલણ પરફેક્ટ એટલા માટે છે કે રાગની અરુચિ અને સ્વભાવની, રાગની અરુચિ પૂર્વક સ્વભાવની સાવધાની છે. કોઈ જીવ અસ્થિનો વગર સમજે એકલો ઉપાડ કરવા ચાહે સમજ્યા વગર, પણ રાગની અરુચિ એને ન થતી હોય, ચાલતો રાગમાં એને અરુચિ ન થતી હોય, તો એવો અસ્થિનો પ્રયત્ન એનો સફળ થતો નથી. કેમ કે એનો કોઈ પરફેક્ટ પ્રયત્ન નથી, ખામી છે. શું કે રાગની પણ રુચિ રાખે છે અને સ્વભાવની સાવધાની કે અસ્તિત્વનું જીવન લાગવું છે નહીં બની શકે. એટલે રાગની અરુચિ અને સ્વભાવની સાવધાની એવું જે વલણ પરિણમનમાં બંને થઈ, બંને પડખા દેની અંદર સમાવિષ્ટ છે, બંને પડખા ઊભા છે, એવું જે વલણ તેનાથી જ્ઞાન થવા યોગ્ય છે. એવું જે ભેદ જ્ઞાન તે સ્વ પરના વિવેક રૂપ દશા છે, આદર છે અને પરને પરપણે જાણતા એનો જે આદર હતો તે છૂટી ગયો, દ્વેષ થયો એમ નહીં, અહીં આદર થયો એટલે રાગ થયો એમ નહીં, અરુચિ અને અનાદર થયો એટલે દ્વેષ થયો. પણ નિજ પવિત્ર સ્વરૂપે રાગાદી પર મરીન ભાવ સ્વરૂપે બંનેનું એક સાથે કમ્પેરેટિવ નોલેજ, તુલનાત્મક જ્ઞાન એને વિવેક કહેવામાં આવે. ક્યાં સ્વ છે પવિત્ર છે, રાગાદી પર છે અપવિત્ર મલિન, આનું નામ વિવેક. જ્ઞાન નો પર્યાય જીવન વિવેક, રાગવેશની પછી ન સમજે એને સમજાવવા માટે એને હેય ઉપાદેય કહેવામાં આવે છે કે સ્વ ઉપાદેય છે રાગ હે છે. ઉપાદેય નો મતલબ એમ નહીં કે રાગ નો છે, એનો મતલબ એમ નહીં કે દ્વેષ નો છે. એવું કહેવાનો આશય નથી રાગવેશ, રાગવેશ કરાવવાનો ક્યાંય આશય નથી. એ ઉપાદેયની કેટલી પણ વિવિક્ષા છે, રાગવેશ કરાવવાનો ક્યાંય અભિપ્રાય જ નથી. માત્ર એકમાત્ર રાગવેશ છોડાવવાના અભિપ્રાયથી વાત ચાલે છે, ત્યાં રાગવેશ કરાવવાની વાત કેમ આવે? બીજી વાત છે હવે જે સ્વપર્મ વિવેક છે એનું થોડું વિશ્લેષણ છે કે સ્વ જ્ઞાનની અંદર અનંત મહિમાવંતપણે સ્થાન પામે છે. જ્ઞાનની અંદર સ્વપણે જે સ્વતત્વ સ્થાન, સ્વતત્વનું સ્થાન સ્વપણે જ્ઞાનમાં આવ્યું તો દુઃખો નથી આવતું, આ સ્વ એમ દુઃખો નથી, અનંત મહિમાવંત મને એ સ્થાન પામે છે. નાયક 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 લુખો નાયક ને આદર છે, અનંત મહિમાવંત છે તે જેવું છે તે હું જ્ઞાનમાં પ્રતિભાસે, એનું નામ વિવેક